जय श्री राम जय जय सिया जय श्री राम जय जय सिया हरि हरि ओम
मनरंजन भव भंजन
हरि ओम
कलिमल हारण भव जग तारण
हरि ओम
मोह निवारक सब सुख कारक
हरि ओम
मंगल मंगल नाम
हरि ओम
मधुर मधुर नाम
हरि ओम
पतित पावन नाम
हरि ओम
दुल्हारा नाम
हरि हरि ओम
कली का सिंहारा नाम
हरि हरि ओम
आनंद आनंद नाम
हरि हरि ओम
पावन पावन नाम
हरि हरि ओम
मंगल मंगल नाम
हरि हरि ओम
बैठो लाला लालिया क्या हाल चाल है शेष वापिस नारायण हरि नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम नारायण नारायण हरि ओम हरि ओम होया क्या हाल चाल है ठीक है बस ठीक है अरे मौज है बहारी है ठीक है ठीक तो सभी का हाल होता है प्रतरदंत ने खूब तपस्या की ऐसी तपस्या की कि इंद्रदेव को प्रकट होना पड़ा वरम ब्रुयात प्रतरदंत मैं प्रसन्न हूं वरदान मांग ले देर मत कर प्रभु देवादि देव इंद्रदेव आप अगर प्रसन्न हैं और मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे श्रेष्ठतम जो आप जानते सबसे ऊंची और श्रेष्ठतम वस्तु वही दीजिए इंद्र ने कहा वत्स ठीक है अच्छा है बढ़िया है तो धरती पे है धरती से तो श्रेष्ठ स्वर्ग है लेकिन श्रेष्ठतम न स्वर्ग में है न धरती पे है न किसी लोक में है प्रतरदंत तू श्रेष्ठतम बात पूछता है श्रेष्ठतम पद चाहता है श्रेष्ठ पद वो है जिसके आगे कुछ भी नहीं ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशेभ्य उस पद को जानने के बाद सब बंधनों से छूट जाते प्रतरदन मैं दैत्यों का विनाश करता हूं मुझे पाप नहीं लगता तुष्टा प्रजापति का पुत्र विश्वरूपा को मैंने गुरु बनाया था लेकिन वो दैत्यों को मदद करने लगा। मैंने उसकी हत्या कर दी, मुझे पाप नहीं लगा। गुरु द्रोह से बड़ा द्रोह क्या हो सकता है प्रतरदंत, लेकिन मुझे दोष नहीं लगा। मैं उस समता में था, ब्रह्म ज्ञान में था, जहां कोई पुण्य ऊंचा नहीं ले जा सकता प्रतरदंत, और कोई अनुचित नीचे नहीं गिरा सकता। जिस पद के आगे अष्ट सिद्धि और नवनिधि पाए हुए हनुमान जी भी नन्हे साबित हुए, जो श्री राम जी को वशिष्ठ ने आत्मपद दिया था प्रतरदंत, वही सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ और परम पद है। देव पद, गंधर्व पद, यक्ष पद, यक्ष अधिष्ठाता पद, दक्ष प्रजापति का पद बड़ा ऊंचा था, लेकिन प्रतरदंत उसमें भी जीवत्व मौजूद था। यहां जीवत्व का जो मूल तत्व है, उस ब्रह्म का साक्षात्कार ही प्रतरदंत सर्वोपरि पद है। यद ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशेभ्यः न तद्भाष्यते सूर्यो प्रतरदंत, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं जा सकता, न शशि को न पावका, चंद्र अथवा अग्नि का प्रकाश नहीं जा सकता, अपितु चंद्र अग्नि और सूर्य को जहां से प्रकाश मिलता है वह परम पद सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। कई लोक होते हैं और कई लोकों के लोकपाल भी होते हैं, और लोकपालों के मूर्धन्य लोकेश्वर भी होते हैं, लेकिन उस पद के बिना वे मेरे नहीं। जब तक मैंने आत्मज्ञान नहीं पाया था तब तक मेरा पद भी अत्यंत तुच्छ था। अब मैं इंद्र पद पे हूं, लेकिन मैं इंद्र ही नहीं हूं। मैं 33 करोड़ देवता का माननीय पद पर हूं, लेकिन ये पद बहुत तुच्छ है। मैंने वो पद पाया है जहां ब्रह्मज्ञानी का चित्त विश्राम करता है, जहां भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश विश्रांति करते हैं, जहां वासुकी विश्रांति करता है, जहां वासुकी के स्वामी नारायण विश्रांति करते हैं। प्रतरदंत उस आत्मपद को पाए बिना, और कोई भी पद है एक से एक भले बहुत बड़े दिखें, लेकिन आत्म साक्षात्कार का पद ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके। प्रतरदंत, मोह किसे कहते हैं? ये स्थूल शरीर, उसमें मैं, अथवा सूक्ष्म शरीर में मैं, अथवा कारण शरीर में मैं, ये सब मोह के राज्य में आता है। प्रतरदंत ध्यान से सुनना, मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह से भी व्याधियों का मूल होता है। तांते उपजे पुनि भव शूला, फिर से जन्म मरण होता है। आम थी जाए तेम थी जाए पछी सु, छोड़ी नी शादी थी जाए पछी सु, छोकरी ने सारो हसबेंड मरे पछी सु, मरसे नहीं, हसबेंड नहीं मरे, छोड़ी नहीं मरे, एना छोकरा मांदा नहीं था, छोड़ी ना दुख मटी जैसे चालू रहे से। पर जहां दुख की पहुंच नहीं और जहां सुख तुम्हें लालायित नहीं कर सकता, ऐसा निर्दुख पद प्रतरदंत सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ। नचिकेता ने यमराज से यही पद जानना चाहा। यमराज ने कहा छोड़ो, ये बड़ा ऊंचा पद है, पृथ्वी का राज्य ले लो। बोले फिर दूसरा राज्य? बोले पूरी पृथ्वी के स्वामी रहोगे तो दूसरा कोई आएगा नहीं, लेकिन बीमार पड़ूंगा। बोले स्वास्थ्य का वरदान, बोले रानियां लड़ेगी, शांति का वरदान, बच्चे नहीं होंगे तो दुख होगा, बच्चे भी होंगे लेकिन वो अनपढ़ होंगे तो भी दुख होगा, नहीं वो विद्वान होंगे लेकिन वो दुराचारी होंगे तो भी दुख होगा। बोले नहीं, दुराचारी होंगे, अच्छे होंगे, बोले अच्छे होंगे और मर जाएंगे तो भी दुख होगा, तुम्हारे जीते जी नहीं मरेंगे, और बाल नहीं आए, ताल पे बाल नहीं आए तो भी टेंशन रहेगा छोरे की मंगनी। वो तो बापू का तेल अभी शुरू हुआ बाल आने का, उस समय नहीं होगा, लेकिन हो भी तो भी क्या। नचिकेता सारे वरदान जो भी तुझे चाहिए मांग ले, लेकिन इस परम पद श्रेष्ठ पद की बात छोड़, उसको पाने वाला बड़ा दुर्लभ है। हे यमराज, संयमपुरी के देवता, उस पद को पाने वाला बड़ा दुर्लभ है, उस दुर्लभ में मैं हूं, और उसका वर्णन करने वाला महान आश्चर्यकारक है वो आप हो। ब्रह्मज्ञान का दान देने वाला दाता जल्दी नहीं मिलता, पढ़ी लिखी बातें भले सुना दे विद्वान, लेकिन अपने अनुभव को छूकर रहमत बरसाने वाला आपके सिवाय मुझे अब कहां ढूंढूंगा। सारे वरदान को निरस्त कर दिया नचिकेता ने। यमराज ने कहा ठीक है, तुम पात्र हो, अब मैं तुम्हें परम पद का प्रसाद देता हूं, उस प्रसाद से सारे दुखों का अंत हो जाएगा। जैसे कोयले की खान में आपको कोयले का दाग न लगे, यह है कर्म कौशल्य। ऐसे ही संसार में सभी परिस्थितियों में होते हुए भी आपको उस परिस्थिति का प्रभाव न छुए। जैसे जल में कमल अलेपा, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा, नानक। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता, मोक्ष भी दे सकता और यहां की परिस्थितियों से के भोग भी दे सकता। कठोवली में है, जिस जिस कामना से ब्रह्मज्ञानी की सेवा पूजा की जाती है वह वह कामना फलती है। अगर तुच्छ कामनाएं नहीं और परमात्मा को पाना है तो वह भी ब्रह्मज्ञानी देव दे सकता है। अगर वो नहीं पाए और मरते समय जिस जिस लोक में भेजना चाहे, बस समर्थ पुरुष संकल्प मात्र से उस लोक में तुम्हारे को भेज सकता है। ऐसा वो पद है। ज्ञात्वा देवम मुच्यत सर्व पाशेभ्यः, उस आत्मदेव को जानने से सभी पाशों से, सभी बंधनों से वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। खाली मुक्त हो जाता है इतना ही नहीं, सतृप्तो भवति, जीते जी अपने आप में तृप्त होता है, वो सतत संतुष्ट रहता है। गीता में भी आया, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयाः, मई अर्पित मनोबुद्धि यो मुद भक्त सम्मे प्रिय। भगवान तो बहुतों को प्यारे हैं, लेकिन भगवान को कौन प्यारे है? ऐसी ब्रह्मवेता उद्धव संत मुझे अति प्यारे, चरण रज निज अंग लगाऊं। ब्रह्मज्ञानी की चरण रज में अपने अंगों पे लगाता हूं, ब्रह्मज्ञानी ऐसा होता है। प्रतरदंत वो सर्वश्रेष्ठ पद है, सर्वोपरि पद है। पृथ्वी लोक में एक से एक अच्छे धर्मात्मा धनवान, एक से एक बड़े धनवान, एक से एक बुद्धिमान, एक से एक प्रसिद्ध, ऐसे करते करते जो पृथ्वी में सर्वप्रथम पद श्रेष्ठ है उनसे भी श्रेष्ठ प्रतरदंत इंद्रपद है। लेकिन हिमालय के आगे जैसे हाथी बोना हो जाता है, हिमालय के आगे हाथी की ऊंचाई क्या है, और जीवों से सबसे बड़ा वजन में मोटाई में हाथी है, सभी जीवों से एक बढ़ते 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 हाथी सर्वोपरि प्राणी है मोटा। लेकिन हिमालय के आते सामने हाथी का बड़पन तुच्छ हो जाता है। ऐसे प्रतरदंत धरती का राज्य फलाना 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 अष्ट सिद्धि नौ दिधि ये सब करते करते इंद्रपद बहुत बड़ा होता है। लेकिन आत्मज्ञानी ब्रह्मवेता पद के आगे मेरा इंद्रपद ऐसा है जैसे हिमालय के सामने हाथी। आश्चर्य त्रिभुवन जय अष्टावक्र कहते हैं, त्रिभुवन को अपने सच्चिदानंद स्वभाव में एक तिनके की नहीं जानता है वो ब्रह्मवेता। प्रकृति के एक अंश में त्रिभुवन है, और प्रकृति जिसके एक अंश में है ऐसा वो ब्रह्मवेता होता है। भूताकाश कुछ भी नहीं, चित्ताकाश उससे ज्यादा है, वो चिदाकाश पद में स्थित होता है। रामायण में भी आया, राम जी ने पूछ लिया ऋषि से कि मैं कौन हूं, आप बोलते आप ये हैं, बोले चिदानंदमय देह तुम्हारी, तुम इतने दशरथ नंदन दिखते हो, ये तो आपकी लीला है, आप तो चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार कोई जाने अधिकारी, जिसमें कपट नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, धोखा नहीं, गद्दारी नहीं है, ऐसा विगत विकार जिसके ये विकार चले गए, अपने गुरु से बेवफाई की नीचता जिसके अंदर नहीं है उसी के यहां टिकता है, दूसरों को दे तो टिकेगा भी नहीं, ऐसा ये पद है। गुरु देना चाहे भाव में प्रेम में आकर, लेकिन विगत विकार नहीं है तो टिकेगा नहीं, हो ऐसा सजाग पद है। परम ज्ञान स्वरूप है, धरती के क्या, स्वर्ग के क्या, त्रिकालज्ञों के जो सामर्थ्य हैं, दूसरों को फूंक मार के जिंदा करने वालों की शक्तियों से भी ये परम शक्ति है आत्मज्ञान। रागे रागवताम प्रतरदंत, रागियों में वो रागी जैसा दिखेगा, बाले बालवताम बच्चों के साथ बच्चों जैसा, मिल गई स्त्री तो वो उनकी बहू सासू बन के काम कर लो करवा लेगा कर लेगा, मिल गए राजा और नेता तो उन्हीं का सिरमोर हो जाएगा, मिल गए भक्त और आंसू बहाने वाले तो हे प्रभु जी प्यारे जी बस देखो तो भाव विभोर हो जाएगा, लेकिन उठत बैठत ओई उठाने को कबीर हम उसे ठिकाने, ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने प्रतरदन, उस ब्रह्मवेता की मति का कोई पार कोई छोर हो नहीं, तुम्हारी गति मति तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बान, सिख धर्म ने कहा सगल समगरी तुम्हारी सूत्र तारी, तुमसे होए सो आज्ञाकारी, तुम्हारी गति मति तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। प्रतरदंत भगवान नारायण ने कहा ना हम वसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में ही सदा रहता हूं ऐसी बात नहीं, ना हम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय वा, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा, जहां मेरे भक्त होते और भक्तों को ब्रह्म ज्ञान देने वाला संत होता है मैं वहीं होता हूं, ऐसे तो मैं सर्वत्र हूं, लकड़ियों में सर्वत्र आग छुपी है लेकिन वो अंधकार भी नहीं मिटाती और भोजन भी नहीं बनाती, बनाने में सहाय करती जब तक वो लकड़ी जलती नहीं, न ठंड मिटती है न भोजन बनता है न अंधकार मिटता है, ऐसे ही सर्वव्यापक सच्चिदानंद तो सर्वत्र है लेकिन उसका जागृत स्वरूप करने वाला सतगुरु का सत्संग जहां होता है वहीं मैं प्रेम रूप से आनंद रूप से माधुरी रूप से समता रूप से सद्गुण रूप से साहस के रूप से मैं जगमगाता हूं लोगों के हृदय। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मवेताओं की नजर से जब मैं अपनी प्रसन्नता बरसाता हूं लोगों के जन्म जन्मांतरों के पाप ताप मिट जाते, साधुनाम दर्शनम पातकनाशनम, और साधु किसे कहते हैं, साध्यन्ते परम कार्यम इति साधु, जिसने ये परम पद पा लिया सर्वोपरि और श्रेष्ठ पद पा लिया उसे साधु कहते हैं। प्रतरदंत तुमने जो मांगा है वो अति ऊंचा है अति ऊंचा है अति दुर्लभ है, सारों का सार सारों का सार, कहां तक कहूं तुझे, तत्र पिता अपिता भवति वेद कहता है, माता अमाता भवति वहां माने मां नहीं रहती बाप बाप नहीं रहता, वेदा अवेदा भवति वेद भगवान कहता है, और वेद शास्त्र भी चुप्पी हो जाते नेति नेति मत करो वर्णन चुप हो जाते, उस पद को देना कोई साधारण तपस्वी साधारण योगी का काम नहीं। गुजरात में काठियावाड़ है, काठियावाड़ के एक बाबा भगवान को पाने के लिए हिमालय में घूमे। अभी उनका आश्रम है वृंदावन में, काठिया बाबा के नाम से। वो काठिया बाबा ईश्वर की प्राप्ति के लिए हिमालय में साधु संत की खोज करते करते एक ऐसी गुफा पे जा पहुंचे जहां लगा कि क्या है, जरा सा पत्थर खिसकाया तो देखा अंदर गुफा है। धीरे से उस गुफा में गए तो एक शांत आत्मा महापुरुष ध्यान मग्न थे। काठिया बाबा ने दंडवत प्रणाम कर दिया हिलचाल से, गुफा में एकदम शांत गुफा में हिलचाल से बाबा का ध्यान टूटा। नाराज वाणी में बाबा ने कहा, अरे कौन हो? काठिया बाबा ने कहा, आपका दास हूं। दास? शिष्य? सेवक? जी महाराज। तो दास तो आज्ञा मानता है, आज्ञा कैसी वो नहीं, आज्ञा किसने की वो महत्व है। किसने कहा है? बोले गुरु ने कहा है, तो बात पूरी हो गई। तो तू दास है? बोले हाँ। तो आज्ञा मानोगे? बोले हाँ हाँ। पास में नदी बह रही है, जाओ कूद पड़ो। साबरमती नदी नहीं थी, हाँ, तापी तट और नर्मदा तट भरूच का नहीं था, पहाड़ी नदी थी जिसमें बड़े बड़े पत्थर भी लुढ़क के धार धार बरसते। कूदे नहीं कि गए नहीं, बचाव बोलने की भी जगह नहीं रहती, कूदे और गए। काठिया बाबा ने हिम्मत की, जय गुरुदेव, जंप तो मारा उस तूफानी पहाड़ी नदी में, लेकिन क्या हुआ, जंप मारा पहाड़ी नदी में लेकिन बैठ गए गुरु महाराज के सामने, आकाश मार्ग से उठ के वहीं आ गए। जिसने आज्ञा दी उसी ने उठा लिया। ऐसे ही गोरखनाथ ने अपने छठे हुए शिष्यों को लेकर एक लीला रची। जंगल में गए, विशाल वट वृक्ष त्रिशूल गाड़ दिया, जो मेरा आज्ञाकारी शिष्य हो वो इस डाल पे चढ़ जाए और चढ़कर ऐसा गिरे सीधा मेरे त्रिशूल पर सो जाए। एक दूसरे की तरफ देखने लगे, वो है वो महाजय का है, वो फलाना है, मैं सब खिसकने लगे। जब सतपात्र शिष्य ने सुना, कहीं सेवा कर रहा था, क्यों सब विचार कर रहे हैं खिसक क्या है, बोले गुरु महाराज कहते हैं कि डाले पर चढ़कर त्रिशूल पर लेट जाओ। बोले गुरु महाराज की आज्ञा? वो चढ़ा, अलग डाले पे चढ़कर अलग करके त्रिशूल पे गिरने का संकल्प। कितनी देर में तो गोरखनाथ दूर जा बैठे थे, अपना संकल्प छोड़ दिया था। गोरखनाथ के अदृश्य हाथों ने उसे त्रिशूल पे लेटे हुए संभाले रखा, अदृश्य हाथ थे। संकल्प, ये सूर्य इतना भारी कैसे अदृश्य हाथों से टिकाए ना, चंदा कितना वजन का होगा अदृश्य हाथों से टिका है, ये पृथ्वी का गोला किसने टिकाया है? गुरुत्वाकर्षण नियम फलाना फलाना गिनते रहो तुम, लेकिन है अदृश्य सत्ता। यह दृश्यम तत् अनित्यम, जो दिखता है वो अनित्य है, लेकिन जिससे दिखता है, जो दिखता नहीं जिससे सब दिखता है वो अदृश्य आत्मा है। मर जाने के बाद कहां दिखता है जीवात्मा? जब जीवात्मा ही नहीं दिखता तो जीवात्मा का अधिष्ठान ब्रह्म कहां दिखेगा? आंखों से नहीं जाए दिखेगा, वहां चक्षु नहीं जाते हैं, लेकिन चक्षु को देखने की सत्ता वहीं से आती है। वहां मन नहीं जाता, लेकिन मन के विचारों को देखने की सत्ता वहीं से आती है। वहां मति नहीं जाती, लेकिन मति के निर्णय बदलने की सत्ता वही है। न दूरे न दुर्लभ है, और दूर भी बहुत है। खोजते 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 कई रॉकेट दौड़ जाए तभी भी नहीं मिलेगा। अरे प्रकृति का, पृथ्वी का पूर्व नहीं मिलता, पश्चिम नहीं मिलता, विज्ञानी थक गए, उत्तर नहीं मिलता, दक्षिण नहीं मिलता, दक्षिण का छोर नहीं मिलता। अभी मैं यहां खड़ा हूं ना तो आपके पश्चिम में हूं, लेकिन उधर खड़ा हो जाऊंगा तो आपके पूर्व में हो जाऊंगा। तो तुम्हारे हमारे बैठने खड़े रहने की कल्पना ही है पूर्व पश्चिम, लेकिन पूर्व के तरफ जहाज दौड़ते जाए, यहां से पूर्व शुरू हुआ नहीं हो सकता, यहां पश्चिम पूरा हुआ नहीं हुआ, थक गए सब। जब ये प्रकृति एक हिस्से में है मुझ ब्रह्म के, तो उसका छोर वोर नहीं, तो मुझ ब्रह्म परमात्मा का क्या आदि है क्या अंत है, इसीलिए मेरा नाम अनंत है। इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक समय समय पर च्युत हो जाते, लेकिन वो मेरा धाम, मैं अच्युत हूं। श्री कृष्ण अपना एड्रेस बता रहे, ब्रह्मवेता भी बोलते मैं अच्युत हूं। अच्युतम केशवम रामनारायणम कृष्ण दामोदरम, जो अपने में चार प्रकार के परलय होते हैं, रोज सो जाते हैं दिन भर का, लिया दिया पाधापी सब परलय हो गया, उसको बोलते हैं नित्य परलय। दूसरा होता है नैमितिक परलय, मोरबी कांड हुआ गुजरात में, हजारों लोग भाग गए, भोपाल में गैस कांड हुआ हजारों लोग मर गए, वो नैमितिक परलय। भूकंप हुआ कच्छ में हजारों लोग एक साथ, नैमितिक परलय। नित्य परलय, नैमितिक परलय। लेकिन ये आकाश गंगा का जो 400 करोड़ सूरज है, सबसे छोटा सूरज हमारी पृथ्वी को प्रकाशित करता है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, उसके साथ जब आकाश गंगा का दूसरा सूरज आने को होता है तो जीव प्राणी चट हो जाते। अभी भी ज्यादा ठंडी में यूपी में लोग मर गए, ज्यादा गर्मी में लोग मर जाते हैं, सूरज की इस सूरज की गर्मी सर्दी से कई जीव मरते रहते, लेकिन दूसरा सूरज, तीसरा सूरज, चौथा, ऐसे 12 सूरज तपते, उसको बोलते आत्यंतिक परलय। आत्यंतिक परलय हो जाता है, 400 करोड़ सूरज में से 11 सूरज उतरते हैं, आत्यंतिक परलय, लेकिन फिर भी वैकुंठ बचा रहता है, ब्रह्मलोक बचा रहता है। लेकिन महापरलय में ब्रह्मा जी और ब्रह्मलोक चल मेरे भैया, वो भी चुप्त हो जाता है। उसके बाद भी जो रहता है ना, वह आत्मपद है, कुछ नहीं रहता है, उसको जानने वाला तो है ना। महापरलय, आत्यंतिक परलय, कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता वो कौन बोलता है, कुछ नहीं बोलता है कि जो सब कुछ है वो बोलता है। सपने में देखा कि मेरी शादी हो रही है, मेरे को बच्चे भी हुए हैं, मेरे को जॉब में प्रमोशन भी हुई है, अब मैं खुशी खुशी में जा रहा हूं बापू के दर्शन करने, हरिद्वार पहुंच गए, गंगा जी में नहाए, घड़ी कपड़े और मेरा मोबाइल कोई ले न जाए, उस चिंतन चिंतन में गंगे हर करके गोते मारे तीन, तो नहा तो बाहर रहा है लेकिन पुण्य की भावना अंदर में है, और मोबाइल कोई चोरी ना हो जाए ये भी शंका अंदर में है, तो सपने में भी अंदर बाहर दिखता है ना, और उस समय सब सच्चा लगता है, उसी चैतन्य से ये सारा दिखता है, लेकिन ये सारा सपना नष्ट हो जाए फिर भी उसको सुबह जानता है, अरे यार सपने में ऐसा था, कुछ नहीं रहा, सपना टूटा तो कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा उसको जानने वाला रहा कि नहीं रहा। नित्य परलय, नैमित्तिक परलय, अत्यंतिक परलय, महापरलय हो गया, कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, फिर भी जो रहता है वो तुम हो। अभी शरीर नहीं रहेगा, पत्नी नहीं रहेगी, पति नहीं रहेंगे, मकान नहीं रहेगा, दुकान नहीं रहेगा, जाति नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, सूक्ष्म शरीर रहेगा लेकिन वो प्रेत में रहेगा, किसी योनि में रहेगा, वो योनि भी नहीं रही सब में, तो फिर भी कुछ जो रह जाता है वही तुम्हारा आत्मदेव है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, असलियत में तुम वही प्रतरदंत।
इसको तो बलि राजा ने गधे का रूप धारण करके इस विद्या को पचाने के लिए एकांतवास किया था। परिचित में होऊंगा तो लोग मिलेंगे ना, ये है ये है ये है, एक बूंद के लिए ये करना है, दो बूंद के लिए ये करना है, जो करना है वो रह जाता है और जो कर करके करोड़ों बार पैदा होके मर गए वो रह जाता है। नानक जी कहते हैं, करनु हतो सो ना कियो, पड़ो मोह के फंद, कह नानक समय रम गयो, अब क्या रोवतन। समय चला जाएगा, मृत्यु आ जाएगी, अरे अरे क्या करोगे। आपको कार मिली, बाइक मिला, स्कूटर मिला, साइकिल मिली, कुछ भी मिला तो यात्रा के लिए मिला है, पहुंचने के लिए मिला है। आप पहुंचो तो भी छोड़ना पड़ेगा और लापरवाही से इधर उधर भटको फिर भी छोड़ना पड़ेगा। वैसे ये शरीर मिला है अपने परम पद को पाने के लिए, अगर पहुंच गए तो इसका सदुपयोग हो गया, नहीं तो भटक के गए, फिर जन्मो और फिर मरो। एक श्वास भी ज्यादा नहीं ले सकते हो, सारी जिंदगी की कमाई अर्पण कर दो, एक श्वास ज्यादा दो नहीं होता। समय देकर सब पाया, लेकिन सब देकर समय का सौवां हिस्सा भी नहीं मिलेगा, हजारवां हिस्सा भी नहीं। इसलिए समय को सबसे ज्यादा कीमती माना है। और तो सबसे ज्यादा कीमती में कीमती वो पद है जो प्रतरदंत मांगता है। मुझे इस पद की खबर नहीं थी, मैं तो लीलाशाह बापू के चरणों में एक बार, हजार बार, लाख बार, करोड़ बार प्रणाम करके लोथपोत होता रहूं तो भी मैं बदला नहीं चुका सकता। मेरी तो मान्यता थी कि शिव जी मिलेंगे, प्रकट हो जाएंगे, क्या चाहिए, मैं बोलूंगा कुछ नहीं चाहिए, बस शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। मेरा तो इतना ही था नजरिया, लेकिन गुरु जी ने बताया शिव जी मिलेंगे तो तुम्हारे सिवा शिव जी किसको मिलेंगे। शिव जी आएंगे, वरदान दे जाएंगे, फिर चले जाएंगे। शिव जी आएंगे और चले जाएंगे, तुम कभी चले जाओगे क्या अपने आप से। आए हाय कहां पहुंचा दिया शहनशाह ने। ये मैं भाषा बोला हूं, गुरु जी ने ये भाषा नहीं कही थी, लेकिन सार यही था गुरु जी का, वही पहुंचा दिया जिससे शिव ब्रह्मा विष्णु प्रकट होते हैं, लीला करते, विलय हो जाते, फिर भी जो विलय नहीं होता वो तुम्हारा अपना आपा है। मेरे गुरु जी की एक विशेषता ये थी कि सत्संग करते फिर सामने कोई बैठा होता ना तो सत्संग में उसकी बात बोल देते। मैं भी ऐसा कभी करता हूँ, सत्संग चल रहा है तो समिति वाले बैठे हैं, दो हाथ से थोड़ी ताली बची, फिर अपने विषय पे बोल दिया। वो आपस में जो है पति पत्नी का या समिति वालों का यूं यूं करते हैं, हमारे तो बोलते गए दो हाथ से ताली थोड़ी बजती। तो भगवान ने यह कहा, अब वो दो हाथ से ताली है और उसका संदर्भ नहीं है, किसी बात को आगे पीछे से सुनकर ही उसकी संगति बनती है। किसी ने कुछ कह दिया, आप कुछ काट पीट के कुछ का कुछ बकते रहो तो उसका कोई मूल्य नहीं है। संगति मिलाकर देखो कितना कितना बढ़िया बात है। तो कोई भी प्रवचन, कोई भी बात होता है तो उसका संगति मिलानी पड़ती, संदर्भ मिला लेना पड़ता है। गुरु जी बीच बीच में ऐसा बोल जाते थे मैं ही जानता और गुरु जी जानते, बस सत्संग तो ऊंचा है, फिर बोलते खलक जी खिजमत खां नभाया बंदगी बहतर, फिर प्रवचन करते और उतना बोल दिया मेरे तरफ शेयर हो गया और उनके इशारे ने ये जन समूह का मंगल किया। खलक की लोगों की खिजमत से ज्यादा मुझे समाधि भी श्रेष्ठ नहीं लगती, मैं समाधि प्रिय व्यक्ति था। गुरुजी बोलते ने मेरा ध्यान लग जाता था और मैं कहा बस अब हिमालय में जाकर जैसे सुखदेव जी महाराज समाधि में रहते थे ऐसे रहूंगा। तो गुरुजी ने धक्के मार मार के खलक जी खिजमत खान वाया बंद, अब बोलते कुछ थे बीच में, एक राजकुमार था, राजा ने उसको गद्दी पे बिठा दिया और फिर वो मंत्रियों के बच्चों से कुछ सीखने जा रहा है। राजकुमार है कि मूर्ख है, पिता ने गद्दी पे बिठाया है तो सब अपने पास हाजिर हो सकते हैं, उन मंत्री और नौकरों के बच्चों से सीखने जाता है, राजकुमार है कि मूर्ख है। मैंने संकेत में कहा वही हूं मैं, माफ करना। कैसा बचा लेते थे। उपलेटा में गुरुजी पधारे थे और वहां से गिरनार का पर्वत यूं दिखे जूनागढ़ का। तो मैंने मेरे जो गुरु भाई थे गुरुजी की सेवा करते थे अंगत, मैंने कहा मैं डीसा जाऊं उसके पहले वो गिरनार का पर्वत देखकर गिरनार के योगियों से मिलने की इच्छा है, लेकिन साईं की आज्ञा के बिना तो नहीं जाता। मैं नहीं जाता, गुरु को धोखा देके अपने मन से कहीं नहीं जाता। 22 किलोमीटर था और डीसा जाते बीच में ही आता था तो जा सकता था, मैं सक्षम भी था जाने आने में। 23 साल के बाद 22.5 साल में तो घर छोड़ा, तो ऐसा नहीं था कि कोई बताएगा रास्ता, लेकिन गुरुजी को मैं समर्पित हुआ हूं तो गुरुजी की आज्ञा के बिना कहीं जाना, गुरुजी से विश्वासघात। तो फिर हमारा मन ही हमसे विश्वासघात करता। तो मैंने बोला कि कल गुरुजी आज्ञा दी है कल जाने को, तो गुरुजी के चरणों में बात रख देना कि मैं जूनागढ़ होते हुए जाऊं, ऐसी तू मेरे को आज्ञा लेके देना। अब वो था वो मेरा हरीफ। उसने गुरुजी को कुछ अपने ढंग से कह दिया कि तो डीसा नहीं जाएगा, जूनागढ़ के योगियों के यहां घूमता घूमता फिर डीसा जाने की आज्ञा मांग रहा है। गुरुजी ने उसकी बात सुन ली। फिर मेरे को बोले हेडाच, हेडाच मीन्स कम हियर, किताब पढ़। वे किताब पढ़ने वाले को किताब दिया, मेरे बैठाया, दूसरा था। एक बार सूरज दौड़ा जा रहा था, बोले सूरज भगवान कहाँ जा रहे हो? बोले वो जो खद्योदय ने आगे इसको क्या बोलते हैं जुगनू, उनसे कुछ जरा मिलने जुलने जा। ये सूरज है कि मूर्ख है? फिर तो मेरे तरफ नजर डाल दी। उनका मूर्ख बोलना भी कितना करुणा से भरा था। फिर मैं नहीं गया तो नहीं गया, आज तक नहीं गया। गुरुजी का तो शरीर नहीं है साकार, अब आज्ञा लेने को तो कुछ, मैं जूनागढ़ आश्रम है लेकिन वो योगियों को खोजने मेरा योगी जोगेश्वर ने तृप्त कर दिया मुझे। जो मेरे गुरु को पसंद नहीं वो मैं पसंद करूं तो नालत है मेरे शिष्यत्व को, नालत है मेरी जिंदगी को। जो तिद भावे सो भलीकार, मेरे गुरुदेव जो तुम्हें भाता है वही हमें भाए, जो तुम चाहते हो वही हो। मेरी हो सो जल जाए, मेरी जो इच्छाएं कामनाएं बेवकूफी वासनाएं जो हो जल जाए, गुरुदेव तुम्हारी हो सो रह जाए। एक बार लक्ष्मण जी ऐसा रोए कि सीता मैया को लक्ष्मण की आवाज सुनाकर आश्चर्य हुआ, भैया आप वीर क्षत्रिय इतना रुदन कर रहे हैं, क्या बात है? आपका रुदन देखकर मेरा हृदय भी पीड़ित हो रहा है। बोले मैया मैं अनाथ हो गया। कैसे अनाथ? बोले मुझे प्रभु ने त्याग दिया। दौड़ी प्रभु के पास, लक्ष्मण भैया का आपने त्याग किया है? राम जी बोलते नहीं तो, हाँ रो रहे हैं विलाप कर रहे हैं बड़े दुखी हैं। अनुज, छोटे भाई को अनुज बोलते, अनुज हाँ प्रभु क्यों इतने दुखी हो? मेरा आपने त्याग कर दिया, मैं अनाथ हूं। लक्ष्मण ये क्या कह रहे, मैंने तुम्हारा त्याग कब किया, कहां किया? मैंने आपसे पूछा कि मैं कुटिया कहां बनाऊं, आपने आज्ञा ना दी, तेरी जहां मर्जी हो वहां बना, तो मुझे अपने मन के हवाले कर दिया, मैं अनाथ हो गया ना। हाय हाय, क्या लक्ष्मण की दूरदर्शिता है, क्या लक्ष्मण जी का समर्पण है, क्या लक्ष्मण जी की सावधानी है। तुझे जो ठीक लगे, तो मेरा मन जो कहेगा वो ठीक करते करते तो मैं तो अनाथ हो जाऊंगा। नाथ आपकी आज्ञा नहीं मिली, तुझे जो ठीक लगे। आज का बेईमान शिष्य बड़ा खुश होता है, मुझे जो ठीक लगे करता जाऊं। और गुरुजी को पता ना चले, कसम है तुम्हें, नहीं तो गुरुजी को पीड़ा होगी, मुझे इतना चंदा करके दे दो, मुझे ये करके दे दो, मुझे ये करके दे दो, ऐसी भी कोई धतिंग चल पड़ी। ऐसा भी एक ग्रुप चल पड़ा है और उस ग्रुप को पता नहीं कि अब हम इस समय कहां पर हैं। वो समझता है बापू को पता नहीं, लेकिन मुझे पता है वो ग्रुप इस समय कहां है।
नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि।
ये कैसा है जादू समझ
में ना आया, कैसा है जादू समझ में ना आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण,
अभी जो सुना जीव तालू में लगा दो और सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ पद क्या है, हे नाकपति आप मुझे वही दीजिए, वही बताइए। पर नाकपति कहते हैं कि पृथ्वी का राज्य तो बहुत तुच्छ है, स्वर्ग उससे बहुत 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 कुछ अच्छा है। श्रेष्ठ ऐसा भी कह सकता है प्रतर्दंत, लेकिन परम श्रेष्ठ और परम पवित्र तो स्वर्ग भी नहीं है, त्रिभुवन में कुछ नहीं। सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ तो आत्मपद है और जहां बैठे वहीं उस आत्मपद की यात्रा हो सकती, और वहां पहुंचने के बाद पतन नहीं होता। अभी आप कुछ ना करो, वहां पहुंचना हो तो जगत में कहीं पहुंचना है तो करना पड़ता है, वहां पहुंचना है तो कुछ नहीं, खाली ओम उच्चारण कराऊंगा, ओम का अश्रु होगा और उसके बीच वहीं हो गए आप, जिसकी महिमा इंद्रदेव का। अभी अनजाना होगा, कुछ समय के बाद विश्रांति की स्थिति होगी तो जान जाओगे। अपने तरफ से कुछ न सोचो, अच्छे विचार आए बुरे विचार आए ना आए ये आए जो है बस ठीक है, मेरी हो सो जल जाए, मेरी इच्छा वासना बेवकूफी जल जाए, तेरा पाना मीठा लागे, जो तिद भावे सो बलिकार मेरे गुरुदेव, जो तुझे अच्छा लगता है। शराबी को क्या अच्छा लगेगा, तुम्हें शराबी बनाना, जुआरी को क्या अच्छा लगेगा, जुआरी बनाना, अफीमची को क्या अच्छा लगेगा, अफीमची बनाना, तो ब्रह्मज्ञानी को क्या अच्छा लगता है जो आपको अच्छा लगे कर दिया कि बाबा हम समर्पण कर रहे हैं। अरे समर्पण के बहाने सब कुछ पा रहे हैं, समर्पण क्या है, लग रहा था कि मैं बड़ा समर्पित हूं, लेकिन मेरे को एक संत थे लालजी महाराज, उसने कहा बड़ा आपका तो बड़ा त्याग है, मैं घर छोड़ के चला गया ना, किसी चीज वस्तु की फिक्र नहीं है, वो नंगे पैर नहाने को चला जाता, रात को सोता तो पैर के तलवे छछुंदर जनावर होते वो फूंक मारते मारते खा जाते, पता भी नहीं चलता, सुबह चलता उसमें बालू घुस जाती, बड़ी पीड़ा होती थी। लालजी महाराज मेरा त्याग वैराग देख के बोलते हैं आप तो बड़े त्यागी हैं, मैं क्या बिल्कुल ये बात नहीं है, मुझसे बड़े त्यागी मेरे भाई हैं, कि आत्मा परमात्मा को त्याग करके शक्कर की दुकान पर जख मार रहे, जख मारा नहीं बोला था, लेकिन वो त्यागी ब्रह्म परमात्मा को छोड़कर, परम पद को छोड़कर वो लगे, वो त्यागी। मैंने तो छोड़ा, थोड़ा सा छोड़ा, संसार का व्यवहार का त्याग किया। उन्होंने तो परमात्मा का त्याग कर दिया, वो बड़े त्यागी, मैं कहां त्यागी हूं। बड़े भाई बड़े त्यागी है, हम तो छोटे त्यागी। आप लोग भी बड़े त्यागी हो। ब्रह्म परमात्मा जो मिल सकता है उसको छोड़ दिया, और जो मिल मिल के नष्ट हो जाए उसी के पीछे जिंदगी पूरी करे। आप भी बड़े त्यागी हो। आप ऐसा नहीं सोचना बापूजी त्यागी, मैं त्यागी नहीं हूं, आप बड़े त्यागी हो, तन हो। आप बड़े त्यागी हो। जो छोटी चीज त्याग करे वो छोटा त्यागी, जो मध्यम चीज करे वो मध्यम त्यागी, जो बड़ी चीज करे वो बड़ा त्यागी, जो महान चीज महान से महान उसे बढ़कर कोई महान नहीं उसका त्याग करके बैठे तो आपको तो मैं प्रणाम करूं। आप महान से महान आत्मा परमात्मा की बेपरवाही करके कितने बड़े त्यागी। आप बोलते बापूजी बड़े, लेकिन मैं सोचता हूँ त्याग में मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप लोग बड़े त्यागी हैं। परमात्मा का त्याग करके बैठे इसे कोई बड़ी चीज त्यागने को होती क्या? जो मरता नहीं, जो बिछड़ता नहीं, बेवफाई नहीं करता और हमारा अमंगल नहीं कर सकता, उसका आप त्याग करके बैठे हैं। आप कितने बड़े त्यागी हो, धन हो। दंडवत कर लूं क्या? आपको संकोच होगा। ये मैं टोंट मार रहा हूं आपको। देखो ये भी मेरे हृदय की सच्चाई है ना, टोंट मार रहा हूं तो बोल रहा हूं ना भाई, मैं टोंट मार रहा हूं, इससे मुझे आनंद है। जितना सच्चाई के करीब होता हूं उतना आनंदित रहता हूं। नारायण हरि हरि ओम हरि। आप सच्चाई के ईश्वर के करीब रहो, फिर जितने भी आरोप लगे ये लगे आपका कुछ बाल बांका नहीं होगा। सच को आंच नहीं, झूठ को पैर नहीं, सच बोलता हूं। सत्यम परम धीमहि भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा। कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई किसी को मानता है, लेकिन सभी की गहराई में सत्य तो वही का वही। वो महापुरुष की कैसी बुद्धि विलक्षण है। सत्यम परम धीमहि, हम उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते। सत्य किसको बोलते हैं? जो सृष्टि के आदि में था, अब भी है, बाद में भी रहेगा, महापरलय के बाद भी रहेगा। श्री कृष्ण का अवतार तो किसी सन में हुआ और किसी वर्षों के बाद श्री कृष्ण अंतरण होंगे, लेकिन श्री कृष्ण का तत्व सत्य स्वरूप, ऐसे तुम्हारा तत्व भी वही है। श्री कृष्ण जानकर मुक्तात्मा महानात्मा बन गए, दूसरों के लिए रास्ता खोल दिया। अब जिसको चाहिए चलो चलो, शब्द है वहां कहीं, दूर हो तो चलना है, परे है तो पाना है। जहां से चलने का शुरू करते वही मौजूद है, जिससे चला जाता है वही तो है। इतना सुगम है और इतना महान है, आंख अपने आप को नहीं देखती, आईने में भी आंख की परछाई दिखेगी, आंख नहीं। ऐसे ही अपना आपा किससे जाने जाओगे, लेकिन वो अपना आपा अपने आप से जाना जाता है, ऐसा विलक्षण भी है। नारायण हरि ओम ओम ओम। ये बीच में जो भगवान के नाम लेते हैं ना अपन, तो ऐसा नहीं मानना कहीं बैठा है और हम उसका नाम लेंगे तो हमारे को मदद करेगा आएगा, ऐसा सोचोगे तो ऐसा झंझट बढ़ेगा। इधर उधर की बात काटने के लिए नर नारी का बैठा है उसमें हम शांत होने को बोल रहे हैं, वो ज्यादा फायदा होगा। हरि नारायण नारायण पुकार पुकार के कितना भी पुकारोगे तो वही अंतरात्मा नारायण होके आएगा, फिर अंतर्धान हो जाएगा। आप ये सुबह से शाम तक किस देवता के लिए करते हैं? मैं देव के लिए करते। एक होती है रति, दूसरी होती है प्रीति, तीसरी होती है तृप्ति। पति पत्नी में रति होती है, पति पत्नी में प्रीति होती है, मिल गया हाथ तृप्त हो गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद सत्यानाश का प्रदर्शन हो जाता है, थकान हो जाती है, कुछ समय में झगड़े हो जाते हैं। ऐसे ही भोजन में रति प्रीति तृप्ति हुई, लेकिन ज्यादा खाओ मिठास तो डायबिटीज, और ज्यादा कुछ करो तो गड़बड़। तो विषय विकारों में जो रति प्रीति तृप्ति है वो जीव को विनाश की तरफ ले जाती, और आत्मरति रेवस्य आत्मतृप्तस्य मानवा तस्य कार्यम न विद्यते। आय हाय हे प्रतरदंत, जिसको आत्मा में रति है, आत्मा में प्रीति है और आत्मा में संतुष्ट है, संतुष्ट सततम योगी। भोगी सतत संतुष्ट नहीं हो सकता, भोग के लिए दौड़ धूप करेगा। भोग भोगने के समय, भोग लेते समय शक्ति पराधीनता, भोगते समय थोड़ा रति प्रीति होगी लेकिन अंत में पराधीनता हो जाएगी। जितना ज्यादा भोग भोगेगा उतना ही जल्दी क्षीण हो जाएगी। भोगा न भुगता वयम एव भुगता, राजा भरत जी कहते मैंने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने मुझे भोग कर बूढ़ा बना दिया। कालो नहीं आती वयम एव आता, समय तो नहीं बीता, मैं ही बीत गया समय की धारा में, समय तो चल रहा है। हम जवान थे फिर बाल गए, अब झुरियां पड़ी, जवानी गई, अंत में हम ही भोगे जाते। भोगी समझता हम भोगते, हम भोगते रहे बेवकूफ। भोगों को हम क्या भोग रहे हैं, भोग हमें भोग कर नोच के प्रसार कर देते। दुनिया के जो जलवे हैं हरगिज कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया तो चलता ही रहेगा, लेकिन एक दिन आएगा कि हम इस तरह से नहीं रहेंगे। तो जो यंत्र मिला है, गाड़ी मोटर जो भी मिला है आपको गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए, अगर इधर उधर भटक गए तो फिर दूसरे यंत्र पे बैठो भटकते रहो। उद्देश्य सही है तो बिल्कुल फटाफट पहुंचो यंत्र को, है तो भी मौज है, नहीं छूट गया तो छूट गया। नारायण हरि ओम 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 ओम। लक्ष्य अपना वो बना ले तो फिर सरल हो जाता है। वो लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चुमेगी आज नहीं तो कल। एक बार लक्ष्य बना ले कि हमें तुम वो परम पद पाना है जिससे बड़ा कोई नहीं, जो हमारे गुरु जी पहुंचे हमें वहां पहुंचना है, जो मैं गुरु जी को मेरे गुरु जी को प्यारा है वो मुझे प्यारा हो, जो श्री कृष्ण को प्रिय हो हमें प्रिय हो, राम जी को शिव जी को जो भी है ना ब्रह्मवेता, वो सब एक मत होते हैं। एक राष्ट्र में दो प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते लेकिन एक कमरे में 10 ब्रह्मज्ञानी रह सकते। और प्राइम मिनिस्टर पद से तो ब्रह्मज्ञानी का पद बहुत बड़ा होता लेकिन वहां समता होती। प्रधानमंत्री पद तो एक है ना, ये आत्मदेव तो जितने अंतःकरण हैं वही उतने ही वही पद है, उसमें टोटा नहीं। राजा को राज मिलेगा तो दूसरा छीन न ले भय रहेगा, इसको कोई छीनने वाला क्या है, अपना आप ही है सबके पास, खाली बताओ। ऐसा नहीं किसी को साक्षात्कार होगा तो मेरा पद चला जाएगा, सेठ कुछ पैसा देगा तो उतना आंकड़ा नहीं रहेगा, लेकिन ब्रह्मवादी दिन दिन रात ब्रह्मज्ञानी लुटाता रहे उसका कुछ धन कम नहीं होता।